इसके बाद अब यहाँ से रुकू नंबर 3 और 4 जो है ये असल में मक्की दौर में नाजिल हुए कुरान का खुलासा है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह ताला के शरीक मुकर्रर न करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है इसमें अगर तुम्हें शक हो और अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने शरीकों को बुला लो, अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ऐसा न किया, और हरगिज तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियां दे दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वो इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। इन आयात का टॉपिक है आज की दुनिया में कल की जन्नत को देखो। ये पहला मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने इंसानियत को खिताब किया, या यूहन्नास। तकरीबन 25 बार 25 times इंसानों को पुकारा गया। इस बात की दलील कि ये कुरान एक बैनुल इक्वामी दावत देता है, ये इंटरनेशनल रिलीजन है। और ये कुरान बता रहा है कि यूनिटी की बुनियाद क्या है, कि एक रब को मान जाओ। आज भी दुनिया में आप देखिए कि अमन माहदों के नाम पे लोगों को किसी एक फोरम पे जमा करने की कोशिशें की जाती हैं। इस सब को इस पे ले आओ, इस इज्म पे ले आओ, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ कोई भी नहीं आएगा। काला गोरे के साथ नहीं मिलेगा, गोरा काले के साथ नहीं मिलेगा, मशरक वाला मगरब के साथ और मगरब वाला मशरक वाले से नहीं मिलेगा। एक ही चीज है जो लोगों में इत्तेहाद पैदा कर सकती है, और वो एक रब के नाम पे पुकारना। कौमियत का नारा नहीं लगाना, सूबाइयत का नारा नहीं लगाना। हमने लोगों को एक दीन पे लाना है। और ये नहीं कहा कि तुम्हें पैदा किया, बल्कि वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये क्यों कहा? इसलिए कि आबा परस्ती की जड़ कट जाए। तुम अपने बाप दादा का नाम लेके कुछ रस्मों को छोड़ ही नहीं रहे, हालांकि बाप दादा भी तुम्हारी तरह के इंसान थे। जैसे तुम खता कर सकते हो वैसे वो भी खता कर सकते थे, इसलिए तुम उनको ना देखो। फिर उसके बाद अल्लसी जाला के बाद आखिर तक देखिए तो ये एक और दूसरे बुत को ढाना है, और वो क्या है? नेचर, नेचरिज्म। आज लोगों ने एक टर्म इजाद किया और वो क्या है कि मदर नेचर। बारिश क्यों होती है जी? ये मदर नेचर है। डिजास्टर क्यों आता है? ये मदर नेचर है। सैलाब क्यों आते हैं? मदर नेचर है। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बता दिया, अल्लजी मैंने पैदा किया है। तुम किसकी बात करते हो? ये अल्लाह की शान है। देखिए, हर दौर में शिर्क की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनका शिर्क बाप दादा की परस्तिश का शिर्क होता है। वो बाप दादा के तौर तरीके नहीं छोड़ते, हालांकि उन घरों को खैर बात कह चुके, उन कपड़ों को खैर बात कह चुके, वो फर्नीचर तो कब का फेंक चुके जो बाप दादा के घरों में था, लेकिन उनके तौर तरीके नहीं छोड़ते। और उनका ख्याल है कि क्या वो गलत थे? कहा हाँ, इंसान थे, हो सकते हैं गलत। लेकिन एक दूसरा शिर्क होता है जो अमूमन पढ़े लिखे लोगों का शिर्क होता है, इंटेलेक्चुअल किस्म का शिर्क। वो क्या कहते हैं? ये दुनिया खुद ही बन गई, कोई बात नहीं, किसने बनाई होगी, लो ऐसे ही बस एक पहिया है वो घूम रहा है। कहा अच्छा, ये कैसा पहिया जो कभी बंद ही नहीं होता? कोई ऐसा पहिया तुम भी बना लो ताकि हर वक्त गैस ना भरवानी पड़े। दुनिया की कोई गाड़ी ऐसी नहीं कि उसमें कुछ भरे ना और वो चलती रहे। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी खूबसूरत नेमतों को हमारे सामने रखा। किस हिकमत के साथ अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है? जब खालिक वो है, जब मालिक वो है, तो फिर उसके सिवा किसी और को क्यों पुकारते हो? और इंसान की असल गुमराही भी यही होती है कि वो अल्लाह का मुकाम इंसानों को देने लगे। फिर इन आयतों में हमने एक चैलेंज देखा, और वो क्या था कि अगर तुम इस बात में शक करते हो कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम भी बना लो। क्या ये किताब अल्लाह ताला की निशानी नहीं है? मक्का वालों ने कितनी कोशिशें की, और 4 मुकामात है पूरे कुरान पाक में जहाँ ये चैलेंज मिलता है कि जाओ तुम भी ऐसा बना लो, पूरा कुरान बना लो। चलो नहीं तो 10 सूरतें बना लो, अच्छा 10 नहीं तो फिर जाओ 1 सूरत बना लो, कुछ नहीं तो कुछ आयतें ही बना लाओ, कुछ तो ले आओ। लेकिन नहीं ला सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्यों? कि ये रब का कलाम है, ये इंसान नहीं बना सकते, ये इंसानों के बस का रोग ही नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ बेबस कर दिया कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ कल वालों को नहीं कहा था, आज भी कहा था। ये जो कुरान पाक आप सबके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह आप में जितने लोग कुरान पाक देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये कुरान चूंकि एक ही जगह से आए हैं तो एक जैसे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दावत है, जाके ले आओ इस किताब को और उसमें हल्की फुल्की कोई तब्दीली कोई चेंज देखो, तुम उसको नहीं देख सकोगे। क्या ये अल्लाह की निशानी नहीं? मुझे तो लगता है इस दुनिया में अल्लाह की सबसे प्यारी निशानी ये कुरान है। इसको देख के जो इंसान इस दुनिया से उठ के अगली दुनिया में जाता है, वो किसी और चीज़ को देख के नहीं जाता। ये लोगों की गुमराहियों वाले दिलों को हिदायत वाले दिलों में बदल देती है। फिर जन्नत का जिक्र हुआ, वहाँ फल दिए जाएंगे। आप देखिए कि दुनिया में फल तो हमें भी दिए जाते हैं, लेकिन आपने फरमाया कि दुनिया के फलों और आखिरत के फलों में नाम के सिवा और कुछ भी मुश्तरक नहीं होगा। हम फल खाते हैं ना, कितना खाते हैं, अल्लाह की रहमत से हर वक्त ही घरों में फल रहते हैं। कभी गौर से देखा, देखिए किसी शख्स ने कभी तरबूज ना खाया हो और उससे पूछा जाए कि इस फुटबॉल के अंदर क्या है, गैस कर सकता है? बाहर से इतना सख्त के पाँव लगे तो नाखून मुड़ जाए, और अंदर से इतना रकीक जरा तेज छुरी लगे तो उसके आंसू निकल आए। अंगूर को देख लें, अनार को देख लें, ऑरेंज को देख लें, एक एक फांग, एक एक उसकी छोटी छोटी बूंद अल्लाह ने पैक कर दी आपके लिए। आप कहते हैं 1 लीटर वाली पैकिंग लूं कि हाफ लीटर लूं, सिंगल पैकिंग लूं कि कितनी लूं, ये पैस्चराइज्ड है, इसके अंदर कोई जर्म्स नहीं। अल्लाह ने आपके लिए एक एक ड्रॉप को पैक किया है। एक ऑरेंज लीजिएगा, उसको खोलें और उसके अंदर जो छोटी छोटी फांके हैं ना उसको देखें, आपको अपना रब नजर आएगा। वल्लाही ये हो नहीं सकता कि एक बंदा शऊर के साथ एक ऑरेंज काटे और वो ये ना कह सके कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह लजीम। मैं कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात, उसने हमारे लिए क्या कुछ बनाया और कितने ना शुक्र हैं। और जो लोग फ्रूट चाट बनाते हुए भी बातें करते रहते हैं लोगों से, मैं कहती हूँ इनको फलों से बातें करनी क्यों नहीं आती? हम इतना क्यों बोलते हैं? आखिर हमारे अंदर क्या भरा हुआ है कि हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं? खाली है अंदर से। जिसको सोच की आदत पड़ जाती है ना, जिसको तदब्बर की आदत पड़ जाती है ना, वो ये नहीं चाहता कि हर वक्त लोग मेरे इर्द गिर्द रहे, वो चाहता है कौन सा वक्त अकेला हो कि मैं इन चीज़ों से बातें करूं। फिर वो फूलों से बातें करता है, फिर वो पत्तियों से बातें करता है। सुभान अल्लाह, तुझे किसने बनाया? ए फूल तुझे किसने बनाया? ए टमाटर तुझे किसने बनाया? लोग आपको दीवाना कहेंगे कि ये इनको खुद से बातें करने की आदत हो गई। होती रहे, इसलिए कि रब की मार्फत इंसान को बेनियाज कर देती है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। इस हिस्से में ये समराज जो है, ये भी निशानी है अल्लाह की। एक और निशानी आपके सामने लिखी हुई है और वो क्या है? अजवाज मुतहरतुन, जोड़े। क्या दुनिया के जोड़े क्या अल्लाह की निशानियाँ नहीं है? सूरत रूम में पढ़ेंगे आप, अल्लाह ताला ने तो शौहर बीवी के ताल्लुक को ही कहा वमिन आयाति ही, ये तो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। आपकी आज तक की इज़दवाजी ज़िंदगी में आपके शौहर आप पे कितना खर्च कर चुके और आप अपने शौहर की कितनी खिदमत कर चुकी, क्या ताल्लुक था आपका उनसे शादी से पहले? तो आप उनको जानती भी नहीं थी, इल्ला माशाल्लाह, आज के दौर का तो मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन आप देखिए कि क्या जोड़ है जो बंदे को जोड़ देता है। दूर बैठ के भी इंसान तड़पता है। सारी चीज़ें आपके पास हों, आपके गले से नहीं उतरती, आप अपने जोड़ के बगैर अपने आप को बेजोड़ महसूस करते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है। आज आपने अपने शौहर को अल्लाह की निशानी समझ के देखना है और दिल में जो अच्छे जज्बात आएंगे ना उसका इजहार करना है। आदत डालें, अल्लाह को लाएं अपने रिश्तों के बीच में, कहें अपने शौहर से कि आपको अल्लाह ने मुझे दिया है, ये अल्लाह का फैसला था कि आप मेरे मुझे मिलते, आपने नहीं मुझे ढूंढा, ये अल्लाह ने ढूंढवाया है। लेकिन वल्लाही सिर्फ शौहर को देख लेना या उसके करीबी घर वाले सास, एक औरत आपको अपने घर में शामिल कर लेती है, कल तक वो पत्ता नहीं तोड़ने देती थी, कोई चीज नहीं हिलती थी उसके घर में उसकी मर्जी के बगैर, आज वो आपको अपने घर में शामिल कर रही है। कितने इख्तियारात आपको उसने दिए, क्या ये अल्लाह की निशानियां नहीं है? ये मोहब्बतें कौन डालता है? ये वो मालिक है जिसका नाम है अल वदूद, और वही जात अब अपनी एक अदना सी मखलूक की मिसाल देता है जो असल में अदना नहीं है। इन अल्लाह ला यस्तही अन यद्रिब मसलम्मा बऊदा, यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता। ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज की, ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है। कौन होते हैं वो? वो लोग जो अल्लाह के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं, और अल्लाह ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है इनको काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातं फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलकलकुम मा फिल अर्दि जमीया, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसरत किया और इनको ठीक ठाक सात आसमान बनाया, और वो हर चीज को जानता है। यहाँ तक कि आयतों का टॉपिक है, कोई चीज नकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में। हमने शुरू में देखा कि सूरत बकरा के नाजिल होने से पहले कुरान पाक का बेशतर हिस्सा मक्का में नाजिल हो चुका था। उन्हीं सूरतों में दो सूरतें, एक सूरत सूरत हज और उसकी आखिरी आयतों में मक्की का जिक्र है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने इस सफर में। इसी तरह सूरत नमल में चींटी का जिक्र आया, तो वो लोग जिनके दिल खोटे थे उन्होंने मजाक उड़ाया, कहने लगे ये हिदायत की किताब है। जैसे आज आपको जाने के बाद कोई पूछे क्या पढ़ के आए कुरान में, तो आपके हाँ वो आज मच्छर की बातें थी। कुछ तो कहेंगे अच्छा वाकई क्या था बताना हमें भी, और कुछ कहेंगे अच्छा जी इतनी देर बैठी इतनी दूर से गई तो मच्छर मक्खी की बातें करके आई। ये जिसके दिल में शक होता है वो ऐसी बातें करता है। इन्होंने शोशे उठा दिए, कहा कि देखो ये कैसा कलाम है कि ये मक्खियों और चींटियों की बातें करता है। इस पे ये आयतें नाजिल हुई और अल्लाह तला ने बता दिया कि हाँ अल्लाह तला नहीं शर्माता इस बात से कि वो मक्खी और मच्छर की मिसाल क्या, वो तो मच्छर के ऊपर के एक छोटी सी जो चीज़ है उसकी भी मिसाल बयान करे। आप देखिए कि मच्छर एक ऐसी मखलूक है कि जिससे हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो आगाह ना हो। मच्छर के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की चीजें रखी हुई हैं। आप तो उसको मच्छर कह के उड़ा देते हैं ना, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। एक मच्छर को अगर आप करीब से देखें और उसकी तस्वीरों को देखें तो आप वाकई कह सकेंगे कि अल्लाह आपकी इस दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है। लेकिन बात यहाँ क्या है कि ये भी गौर करने की चीजें हैं। अगर अब आपने इन मक्खियों और मच्छरों को अल्लाह की मखलूक समझते हुए देखना शुरू कर दिया ना, मैं आपको पूरे शऊर से कहती हूँ कि ये मच्छर आपको काटेगा ना तो आप मुस्कुरा देंगे। ये कॉकरोच, ये छोटे छोटे कीड़े, ये चीजें फिरती हुई आपको अल्लाह ताला की फैक्ट्रियां दिखेंगी। एक एक चीज रब का फैसला है, कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा। देखिए मच्छर की बात हुई, हमें क्या फायदा, वो हमारा गुस्सा चला गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सोच बदल गई ना। ये अल्लाह की कायनात है। आप सोचते हैं कि ये आपके लिए कोई फायदे की चीज नहीं, ये आपको मतलब बस ऐसी दुनिया में अल्लाह ने बना दी, ऐसी चीज नहीं है। तदब्बुर के नाते से सुनिएगा कि एक छोटे से मच्छर को भी अल्लाह ने कितना दिमाग दिया है। कि मच्छर जो है नर भी होता है और मादा भी होता है, जैसे हमारे मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं इनके अंदर भी होते हैं, और जिस तरह इंसानों के अंदर सेक्स की तलब है मच्छरों में भी होती है। कैसे तलब करते हैं? कि नर जो मच्छर होता है उसके सुनने के जो आलात है ना उससे वो फीमेल जो होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं, और एक पूरे झुंड की शक्ल में वो हवाओं में जाते हैं, और जहां कोई फीमेल मिलती है वो उनके झुंड में आ जाती है। यानी मैं हैरान हो रही थी पढ़ते हुए, और मैंने कहा अल्लाह ताला हमने तो कभी इनको सोचा ही नहीं। और हर चीज में एक जहां है, वो कहते हैं ना कि आलिम के लिए कतरा भी कायनात है और जाहिल के लिए कायनात भी एक कतरा है। जिसने गौर करना है ना उसको छोटी छोटी बातों पे भी अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी। और अल्लाह ताला ने ये मक्खी और मच्छरों की बातें इसलिए भी की, ये कुरान हिदायत की किताब है, और हिदायत वही होती है जो लोग समझ सके। अब जब कायनात में मच्छर हैं तो उसकी मिसाल कुरान में आ गई तो क्या बड़ी बात है। इसके बरक्स वो लोग जिनको अपनी शख्सियत का रोब धारना होता है ना, वो बड़े बड़े लफ्ज बोलते हैं। बाज लोगों को अब देखें वो बात करेंगे, बात बुरी कर जाएंगे, सुनने वालों के दिमाग में एक भी नहीं आएगी, क्योंकि वो बातें इतनी ऊंची थी वो दिमाग से ऊपर गुजर गई। अल्लाह ने इंसानों को बिल्कुल छोटी छोटी मिसालें दी। फिर आप देखिए कि मच्छर के अंदर ये जो खून चूसने का अमल है वो भी एक अजीब है। सिर्फ मादा मच्छर जो है वो खून चूसती है, और इसके खून चूसने की वजह क्या होती है कि इसको अंडे प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, और ये हमारे ब्लड में से सिर्फ प्रोटीन लेती है, नर नहीं लेता। नर और मादा दोनों पौधे के अंदर से फूड लेते हैं, लेकिन इसको जब अंडे हैच करने होते हैं सिर्फ उस वक्त चूसती है। और खून चूसती कैसे है? सुभान अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर कहते हैं कि यानी ये जो वेन्स छुपी होती है ना, ये मच्छर को नजर आती हैं। और नजर क्यों ना आए, मच्छर की तकरीबन 100 आंखें होती हैं और ये सर की चोटी पर होती हैं और वो मुख्तलिफ तरह से देखती हैं। और कहते हैं कि वो आंखें चारों तरफ से दिखा के फिर उसकी जो मैसेजेस होते हैं उसको दिमाग तक पहुंचाती हैं और वो फौरन पहचान लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ गया। फिर इसके जो अगले दांत होते हैं ना, जबड़े की तरह होते हैं, जैसे यूं, ये कैफियत अपनी दोनों उंगलियों को मोड़ के देखें, आरी देखिए ना, तो ये जब किसी के खून में होते हैं ना, तो अपनी आंखों से हमारी रात के अंधेरे में भी हमारी वेंस को देख लेते हैं। ये रोशनी में नहीं देखते, ये आवाज के साथ देखते हैं। फिर जहाँ ब्लड होता है, आगे के दो दांत स्किन में डालते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे जिस्म में देखिए अल्लाह ताला ने क्या क्या खजाने रखे हैं, कि एक एंटीबॉडीज, एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो ही हमारे जिस्म में कोई चोट लगती है या कहीं कोई कट लगता है ना, तो दिमाग से एक ऐसी लहर उठती है कि फौरन ऐसा सोल्यूशन डालते हैं कि जिससे हमारा खून खुश्क हो जाता है, यानी जमने लगता है। अब मच्छर जब काटता है ना, तो हमारे जिस्म के अंदर फौरन एक वायरलेस पैगाम जाता है कि फौरन इधर वो चीज लाओ कि जिसकी वजह से रुक जाए। अब मच्छर को भी पता है, जिस वक्त वो हमारे जिस्म में कट लगाता है ना, तो फौरन उसके जिस्म से एक ऐसा सोल्यूशन निकलता है जो हमारी स्किन पे डालता है कि हमारी स्किन सुन्न हो जाती है और वो एंटीबॉडीज यहाँ असर नहीं करती और ये खूब दिल भर के खून चूसती है, चूसती है। इसने हमारी स्किन को स्टरलाइज किया होता है, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले आप उसको स्टरलाइज करते हैं ना, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता। जब वो पेट भर लेती है ना, और उतनी देर में वो जो सोल्यूशन होता है उसका असर खत्म हो जाता है। जब ये उड़ती है तो फिर हमें दर्द का एहसास होता है, क्योंकि वो असर उसका खत्म हो चुका होता है। ये किसने सिखाया, ये किसका फैसला है? हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में कोई चीज बेकार है? ये तो आपने सिर्फ मच्छर को देखा है, जब आप अपने आप को देखेंगे ना इस सफर में, आपको ये बंद किताब कायनात के अंदर खुली हुई दिखेगी। अल्लाह ताला ने कायनात में जो कुछ रखा है, फिर अंडे बनने का वक्त, फिर इनके पैदा होने का, पढ़िए हारून जाजा की बुक है, अल्लाह ताला की निशानी अकल वालों के लिए, इतनी प्यारी आपको फिगर्स इसमें मिलेंगी और आप हैरान होंगे कि कैसे, यानी मच्छर की जिंदगी में कैसा भी दौर आता है कि अगर एक कतरा पानी का इसके जिस्म में चला जाए तो ये मर सकता है। इसकी पैदाइश पानी में शुरू होती है और खुश्की पे जाता है। 3 दफा डिलीवरी से पहले इसका बच्चा जो ये अपनी स्किन बदलता है और उस स्किन के अंदर से निकल के आखिर में एक बिल्कुल बाहर चीज सामने आती है। लेकिन वही बात है कि नल्ला यदरिबा मसलम मा बऊदा पमा फो, कहा ये एक छोटी सी जू होती है, उसका भी तस्करा है, वो मच्छर के ऊपर होती है। अल्लाह अकबर, एक दफ़ा तो मोहब्बत से कहें कि अल्लाह तेरी शान बुलंद है, सुबहान अल्लाह, जो तू पैदा कर ले तो उस पर कादिर है। आगे चलते हैं। वइस काल रब्बुका लिलमलाइकतिन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हो जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीजगी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वाल्लमा दमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रदहुमल मलाइका, अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। इन सब ने कहा अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि जमीन और आसमानों का गैब जानने वाला मैं ही हूँ, और मेरे इल्म में है वो कुछ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यहाँ तक कि आयतों का टॉपिक है इख्तियार के बावजूद बेइख्तियार बन जाओ। ये वो मुकाम है कि जहाँ से इंसान को उसके आगाज की कहानी सुनाई गई। हर इंसान के दिल में ये सवाल उठता है, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया और मैंने किधर जाना है। बच्चे के जहन में ये सवाल बचपन में उठ जाता है, पूछते हैं बच्चे मम्मी मैं कहाँ से आया, मुझे किसने पैदा किया। और बड़े लोगों के जहन में ये सवाल उस वक्त उठता है जब किसी मुश्किल में फंसते हैं, कोई मुसीबत आती है ना, फिर उस वक्त इंसान पूछते हैं कि हम कहाँ से पैदा हुए। लोगों ने इस पर बड़ी कोशिशें की। एक शख्स था डार्विन, उसने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया कि जिससे आज के मौजूदा दौर का इल्हाद सबसे ज़्यादा फैला। यानी ये वो शख्स है कि जिसके नज़रिए ने सबसे ज़्यादा मादा परस्ती फैलाई। आज जो मटीरियलिस्टिक दौर दिखता है ना, उसकी वजह यह है कि लोगों ने क्रिएटर को नहीं माना। वो कहते हैं हम खुद बने हुए, खुद को मानते हैं कि हम मखलूक हैं लेकिन क्रिएटर कोई नहीं है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की बात हमारे सामने रखते हैं और लफ्ज़ खलीफा से ये पता चल गया कि इंसान बेख्तियार होगा। देखिए एक लफ्ज़ होता है हाकिम और एक होता है खलीफा। फर्क क्या है दोनों में? हाकिम खुद मुख्तार होता है, जो चाहे करे जो चाहे छोड़ दे। खलीफा नॉमिनेटेड होता है, हाकिम किसी को खलीफा बनाता है। लफ्ज़ खलीफा से ये पता चल गया कि ऐ इंसान, तू इस दुनिया में अपनी मर्जी नहीं कर सकता, तुझे रब ने बनाया, इस दुनिया में तू खलीफा बन जा, कल की दुनिया में तुझे हाकिम बना दूंगा। कैसे? लहुम फीहा मा यद्दाउन, लहुम फीहा मा यश्तहून, कल जन्नत में जो चाहोगे मिलेगा, आज तुम वो सब मान जाओ जो मैंने तुमसे चाहा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, फरिश्तों को थोड़ा सा अंदेशा हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो खून रेजियां करेगा। क्यों ये ख्याल पैदा हुआ? इसलिए कि इंसान का इख्तियार उनको दिखा रहा था कि चॉइस दे दी जाए तो फिर लोग क्या करते हैं। मैं सिर्फ मिसाल ही दे दूं ना, यहाँ बैठे हुए लोगों की चॉइस दे दी जाए ना, जहाँ मर्जी बैठे, जो मर्जी करें, उठना चाहे उठ जाए, फोन सुनना चाहे सुन ले, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस हॉल का नज़्म ज़ब्त खराब हो जाएगा ना। बस इसी को समझ लें, आपकी आवाज़ें और आपका उठना और आपकी बेतरतीबी जो है, ये इस कमरे का फसाद है। इसी तरह कायनात में उस वक्त फसाद फैल जाता है जब लोग अल्लाह के हुक्म नहीं मानते। शिर्क सबसे बड़े फसाद की जड़ है। अगर आप दुनिया से फसाद ख़त्म करना चाहते हैं ना, शिर्क को ख़त्म कर दें। इसी तरह एक एक चीज़ चलती जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या जानता था अल्लाह? अल्लाह ताला ये जानते थे कि अगर बुरे होंगे इस दुनिया में तो अच्छे भी तो इधर ही होंगे, अगर चोर डाकू लुटेरे होंगे इंसानों में तो कोई बात नहीं, नबूवत का ताज भी तो इंसानों ही के सर पे रखा जाएगा, सिद्दीकीन भी तो इंसानों में से ही होंगे, शुहदा भी तो इंसानों में से ही होंगे, और अल्लाह के कलाम की मोहब्बत में इतनी देर बैठने वाले भी तो इंसानों में से ही होंगे। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी, तकरीम दी, और फरिश्तों के उस अंदेशे को गलत कर दिया। हमारे लिए यहाँ सोचने का एक नुक्ता है, और वो क्या कि जब हम गलत काम करते हैं तो क्या फिर हम फरिश्तों के अंदेशे को सच करते हैं, या अल्लाह ताला का जो मान था हमारे ऊपर उसको रखते हैं। हर बंदा हर लम्हे अपने आप को एक मुख्तलिफ निगाह से देखे, और वो निगाह क्या है कि मैंने इस दुनिया में वैसे जीना है जैसे मेरा रब चाहता है। रब से पूछ पूछ के इस दुनिया में जी लें, उस दुनिया में अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन लोग इस बात को कम ही समझते हैं। जो लोग अल्लाह से पूछ के ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उनकी ज़िंदगी दुनिया में भी इत्मीनान वाली होती है, और वो लोग जो दुनिया में अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उनसे पूछिए वो आज कितने मुश्किल है। लोगों ने बड़े बड़े दावे लगाए, हमारा जिस्म है हमारे रूल चलेंगे। अच्छा जी ठीक है, नहीं चलाते आपके ऊपर रूल, आप खुश रह लें, जाके पूछिए खुश है। यदि मैंने एक ऐसी जगह ऑब्जर्व की, बहुत ओल्ड पीपल वहाँ थे, और मैंने जो करीब से गुजरते आते जाते रास्तों में या कभी घर से देखा, मैंने देखा कि इनकी ज़िंदगी मिजरेबल है। मिजरेबल कह लें आप, काबिले रहम, अपनी औलादें पास है ही नहीं। मैंने कहा इनके बच्चे नहीं आते इनको मिलने? कहा वो कहते हैं जब गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ले ली है तब हम क्यों लें। आज इंसानियत को क्या तोहफे दिए जा रहे हैं? आज दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के जो रंग ढंग है, क्या उससे खैर निकल रही है कि शर निकल रहा है? आज भी अमन और चैन उसी की ज़िंदगी में है कि जिसने अल्लाह ताला के प्लान को अपनी ज़िंदगी में शुरू कर लिया। देखिए इस दुनिया का प्लान बनाने वाला रब है, और उस प्लान को अमली जामा पहनाने वाला इंसान है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसका नक्शा बनता है, फिर उसमें काम तो मजदूर करते हैं ना, नक्शा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, काम करने वाले अगर गलत बिल्डिंग बना दे तो वो बिल्डिंग कोलैप हो जाती है ना, गिर जाती है। इसी तरह अगर आज इस दुनिया में फतूर और फितने और इज़्तिराब दिखता है ना, तो उसकी वजह हम इंसान हैं, अल्लाह की ज़ात नहीं है, और अल्लाह ताला हमें वाकई अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक जीने वाला बना दे। अब एक और मरहला है, एक और सीन है हमारे सामने, वो क्या? वइस कुलना लिल मलाइकतिस जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, इसने इनकार किया और तकबर किया और काफिरों में हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जहाँ से चाहो खाओ पियो बफरागत, लेकिन इस दरख्त के करीब भी न जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने इनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया, और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फतअबा अलैह। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली, और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। कुल नहबितु मिन्हा जमीया। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे तो इसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। और इसके बरक्स वल्लसीन कफरू व कज्जबू बि आयातिना उलाइका असहाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुठलाएं वो जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। इन आयात का टॉपिक है असल इम्तिहान, मलकूती रवैया या इबलीसी रवैया। असल इम्तिहान क्या है कि फरिश्तों वाले रवैये अख्तियार किए जाते हैं इस दुनिया में या शैतान वाले। हमने इस रुकू में दो मुख्तलिफ किरदार देखे, एक आदम और एक इबलीस। आदम कौन था? अल्लाह का फैसला था, अल्लाह का हुक्म था बस। इबलीस कौन था? अल्लाह के आगे झुकने वाला, सजदे कर करके घट्टे पड़े हुए उसके माथे में। लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो अकड़ गया। इसी तरह हर दौर में हर इंसान के सामने एक आदम होता है। वो अपने वक्त का दाई दीन भी हो सकता है, वो खैर की तरफ बुलाने वाला भी हो सकता है, या हर एक वो भी हो सकता है कि जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हुक्मों की दावत दे। कुछ लोग आदम अलैहिस्सलाम जैसा मामला करते हैं, और वो क्या कि गलती हो गई, फल चख लिया। शजरे ममनुआ का जिक्र था, प्रोहिबिटेड ट्री, वहां भी एक था, दुनिया में भी एक है। वहां क्या था कि सारी जन्नत हलाल है, बस एक दरख्त है इसके पास ना जाना। क्या था, क्यों था, इससे तो कोई बहस ही नहीं। हाँ, ये पूछना चाहिए कि क्यों मना किया गया, ताकि पता चल जाए कि कल दुनिया में आने के बाद कौन अल्लाह की मना करदा चीज़ों पे रुक सकेगा। इम्तिहान था, और अल्लाह का यही मिजाज है। जन्नत में एक चीज़ हराम थी, बाकी पूरी जन्नत हलाल थी। दुनिया में सारी कायनात में फैली हुई नेमतें हलाल हैं, सिर्फ चार चीज़ें हराम हैं। आगे आएंगी इंशाल्लाह, सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे। शैतान का कल भी वही रवैया था, आज भी यही है। क्या सारी जन्नत को छोड़ के उस मनाशुदा दरख्त को इतना ग्लैमराइज करके दिखाया, इतना खूबसूरत करके दिखाया कि लगा कि सारा टेस्ट इसमें। और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का सारा इल्म होने के बावजूद इबलीस के फंदे में फंस गए। अल्लम अला आदम अलस्मा कुल्लाहा, दुनिया का इल्म दिया अल्लाह ने, इसके बावजूद शैतान के फंदे से ना बचे। फिर फतलक आदमों में रब्बी ही, ये वही का इल्म था। हमारे लिए इसमें अमल की बात, समझने की बात क्या है कि दुनिया के सारे अलूम पाने के बावजूद भी इंसान के ऊपर शैतान का जोर चलता है, लेकिन इल्मे वही के आने के बाद फिर वो एक इंसान शैतान के ऊपर बोझल हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस मिसाल से हमें सिखाया क्या कि अगर तुमसे कभी कोई गलती हो जाए तो फिर तुमने अकड़ना नहीं है, बल्कि आदम की तरह क्या कहना है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे, अगर तूने माफ़ ना किया, मेरे पे रहम ना किया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। इंसान से गुनाह होते हैं, ये नहीं हो सकता कि गुनाह ना हो, लेकिन गुनाह करके इंसान अटकता नहीं है, वहां जम नहीं जाता। ये ऐसे जैसे रास्ते में चलते चलते पाँव पे मट्टी पड़ जाती है, छींटे भी पड़ सकते हैं, फौरन उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के बैठ जाएं कि अब ये हो गया तो अब इसकी क्या बात है और इसको हम छोड़े ना, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर अपने आप को शर्मिंदा करना है। और शैतानी रवैया क्या है कि गलती करना और अकड़ना, हमारी जुबान में क्या कहते हैं इसको, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो बस हम अपने आप को चेक करेंगे। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी गलतियों को लीगलाइज करने के लिए अल्लाह ताला को ब्लेम करने लगता है, और अल्लाह ना करे कि हम ऐसे लोगों में हों।